और ये सत्संग कब मिलता है महाराज? ये सत्संग आपका विशेष अनुग्रह होता है तब मिलता है। और सत्संग के अंदर सुनने वाले की आपके अंदर प्रीति पैदा होती है। आप में प्रीति पैदा हो जाए, बस यही जीव का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। मैं अपने पर बड़ा भारी अनुग्रह रख रहा हूं महाराज कि देवताओं के साथ मैं युद्ध में चला गया और अब मेरे परिवार के कोई लोग नहीं, मेरा राज्य भी नहीं, उन सब से मेरा पिंड छूटा है। अब महाराज मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं। जो भी आप अपने प्रेम के अतिरिक्त लोक देंगे या वस्तु देंगे उनमें मेरा बंधन हो जाएगा। मैं महाराज बहुत कष्ट पाया हूं, चिरमिह वृजनार्थ स्तप्यमानो अनुताप ही, मैं संसार के संतापों से एक जन्म से नहीं चिरम बहुत लंबे काल से मैं तप्त हो रहा हूं। मेरी एक भी बात यहां पूरी नहीं होती, माने कोई बात पूरी होती है तो यूं हो ही जाती है, अरे पूरी होनी तो वो हो तब जब कोई बात मन में उठे ही नहीं। मेरे मन से कभी भी इच्छाओं का नाश नहीं हुआ तो मुझे कभी भी शांति नहीं मिली। हे कमल नेत्र, अब आपके चरणों को मैंने स्वीकार कर लिया है, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे शोक रहित जीवन दे दीजिए, अमृत से परिपूर्ण मुझे जीवन दे दीजिए। ध्यान देवे भाई, अब प्रार्थना तो भागवत में बहुत है और प्रार्थना के बाद भगवान ने बातें भी बहुत सी कही हैं, लेकिन एक बात जो यहां मुचकुंद के प्रसंग में कहेंगे भगवान, ऐसी बात संपूर्ण भागवत में नहीं कही है, आप लोग बहुत ध्यान से सुने। भगवान कह रहे हैं कि हे सार्वभौम, हे महाराज, तुम्हारी ऐसी निर्मल मति देख करके मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। मैंने तुमको वर मांगो ऐसी लुभाने वाली बात कही थी, लेकिन तुम्हारे मन में कोई लोभ पैदा नहीं हुआ, कोई इच्छा पैदा नहीं हुई। वस्तुतः ऐसी जिनके मन में प्रीति होती है मेरे प्रति, उनके मन में कभी भी लोभ की रेखा ही नहीं होती। अरे उनके मन से लोभ ऐसे समाप्त हो जाता है कि मेरे जगाने पर भी वो वहां लोभ नहीं रहता, मेरे द्वारा इच्छा पैदा करने पर भी उसमें इच्छा पैदा नहीं होती। इस कारण मेरा प्रेम बहुत ऊंचा है जिसमें ये काम क्रोध लोभ आदि सब डूब करके समाप्त हो जाते हैं। राजन अब बताओ, खास बात कह रहे हैं कि राजन, लोग अपने मन को प्राणायाम आदि के द्वारा वश में करना चाहते हैं और तरह तरह से मन को रोकने का उपाय करते हैं और कभी कभी उनका मन कभी रुक भी जाता है, एकाग्र हो भी जाता है, लेकिन वो एकाग्र होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर अभ्यास के द्वारा एकाग्र हो भी जाएगा तो उससे क्या हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद मन फिर वासना के जंजाल में फंसेगा, उसके मन में फिर वासनाएं पैदा होंगी और फिर वो विषयों की तरफ जाएगा। तो ऐसे प्राणायाम आदि उपायों से रोके हुए मन की कोई विशेषता नहीं है, विशेषता यही है कि इसी मन में मेरे प्रति प्रेम पैदा हो, मेरे से प्रेम करने के लिए मन की एकाग्रता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता मन से प्रेम करने की है, मुझे अपना मानने की है और मेरे से ही प्रेम करने की इच्छा है। ये बहुत ऊंची साधना है राजन, इससे ऊंची कोई साधना नहीं है। बड़े बड़े समाधि वालों को देखा है, उन्होंने समाधियां लगाई, कई दिन तक समाधि लगा ली, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब समाधि पक्व हो गई, परिपक्व हो गई, तो उसके बाद समाधि टूटते ही उनकी उधर कामना के अंदर प्रवृत्ति हो गई। देखो एक महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं कि एक बाबा जी थे जो समाधि लगा लेते थे। वे बाबा जी एक बार घूमते घूमते किसी गांव में चले गए। उस गांव में ठाकुर साहब के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था। महात्मा जी ने देखा कि घोड़ा मिल जाए तो ये पैदल चलने का जो कष्ट है ये सदा के लिए दूर हो जाए। तो महात्मा जी ने जाकर ठाकुर साहब से कहा कि महाराज ठाकुर साहब, ये आपका घोड़ा हमको दे दो तो ठीक रहे। ठाकुर साहब ने कहा कि महात्मा जी ऐसे घोड़ा नहीं मिलता है, कुछ चमत्कार दिखाओ तो मिलेगा। ये क्या चमत्कार दिखावे? बोलो कि वो तो आप जानो, जो भी आप चमत्कार दिखाओगे हम उसे स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे। बाबा जी ने कहा अच्छी बात है, खोदो खोदो इस बस्ती के अंदर एक खड्डा। तो गांव के बीच में जगह थी खाली, उसमें खड्डा खोदा। खड्डा खोद करके और बाबा जी ने कहा देखो मैं इस खड्डे के अंदर जाकर बैठता हूं और आप लोग जब मेरा शरीर है इसके ऊपर थोड़ी पट्टी रख दो और ऊपर मिट्टी डाल दो, खड्डे के अंदर मैं बैठा हूं, 7 दिन तक आप मुझे देखेंगे कि मैं समाधि में स्थित रहूंगा और उस 7वें दिन के बाद मेरी समाधि खुलेगी। इतने दिन तक बिना खाए पिए किसी प्रकार से कोई चीज स्वीकार किए बिना मैं रहूंगा और मैं मरूंगा नहीं। मर जाऊंगा तब तो ठीक, मर गया कोई बात नहीं, और यदि न मरूं तो आपको घोड़ा देना पड़ेगा। ठाकुर साहब ने कहा कि बाबा जी ये शर्त मुझे हजारों आदमियों के बीच में कहते हैं कि मंजूर है। तो बाबा जी के लिए खड्डा खोदा गया, बाबा जी अंदर जाकर विराजमान हो गए और विराजमान होकर के अपने प्राणों को ऐसे खींचे कि धीरे 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 उनके प्राण संज्ञा शून्य हो गए और मन एकदम लीन हो गया और ऊपर उनके खड्डे को भर दिया गया। और देखा कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन और 7 दिन पूरे हो गए। खोदा खोदे तो बाबा जी वैसे ही श्वास ले रहे हैं। बाबा जी को बाहर निकाला, बाबा जी बाहर आते कहने लगे कि लाओ राजन घोड़ा। तो राजा ने कहा महाराज 7 दिन समाधि लगाई, समाधि का इतना बड़ा आपको लाभ मिला और फिर भी आपने घोड़ा ही चाहा। तो समाधि लगा देने के बाद भी, मन के एकाग्र हो जाने के बाद भी, जो वासनाएं जो इस मन में भरी पड़ी हैं, ये वासनाएं जब तक नहीं निकलती हैं तब एकाग्र मन से विशेष लाभ नहीं होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोई मन की एकाग्रता के लिए चेष्टा ही न करें, चेष्टा जरूर करनी चाहिए, परंतु मन के एकाग्र होने से वो लाभ नहीं होता जो लाभ मन के निर्विकार होने से रहता है। देखो मन में 2 प्रकार के दोष है, एक तो दोष चंचलता का है और एक दोष संसार की वासना का है। हम लोग वासना के दोष को मिटाने के लिए तो प्रयत्न नहीं करते हैं और चंचलता के दोष के मिटाने के लिए प्रयत्न करते हैं। भगवान यहां मुचकुंद के इस उपाख्यान में यही बताते हैं कि चंचलता का जो दोष है वो इतना दोष हम नहीं मानते हैं, जितना दोष संसार की वासना इसके अंदर पड़ी है ये ज्यादा दोष है। इसलिए अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम, इसलिए जब तक प्राणायाम आदि के द्वारा मन को एकाग्र तो कर लोगे और वासना नहीं निकालोगे, वासना मन नहीं निकालोगे तब तो ये मन शुद्ध नहीं होगा और फिर विषयों में भटकता रहेगा। अच्छी बात है, तुमने अपना मन मुझमें लगाया है तो तुम्हारी मुझमें भक्ति होगी। तुमने क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर बहुत से जीव जंतुओं को मारा है, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और फिर मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान ने कहा, भगवान ऐसा वरदान देकर के अदृश्य हो गए और वो मुचकुंद जी अपने गुफा से बाहर आए। गुफा से बाहर आकर के उन्होंने देखा कि सब छोटे छोटे आदमी हैं। हमारे जमाने में तो बहुत बड़े बड़े आदमी होते थे, यहाँ तो पशु पक्षी और ये वनस्पति सब छोटे छोटे हो गए। इसका मतलब कलयुग आ गया है, अब चलो उत्तराखंड की तरफ गंधमादन पर्वत पर जाएं तपस्या करें। वे नरनारायण के स्थान बद्री आश्रम में आ गए और सब प्रकार के सर्दी गर्मी बरसात सबको सहते हुए, द्वंद्व को सहते हुए भगवान की आराधना करने लग गए। ये तो बात एक तरफ हो गई। इधर क्या हुआ कि भगवान वापिस मथुरा में आए कि अब जरासंध के साथ में और युद्ध करना है। अब भगवान वहां आए तो बलराम जी भी वहां आ गए। जरासंध 23 अक्षौहिणी की सेना के साथ आया था। भगवान ने देखा कि हम सदा ही जीतते ही रहते हैं, कभी कभी जरासंध का भी तो उत्साह बढ़ाना चाहिए। तब भगवान ने देखा जरासंध सामने है तो जरासंध को देखते देखते भगवान वहां से भागने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों जब भीरु भीतवत डरपोक के समान भयभीत होकर जब भागने लगे तो जरासंध की सेना ने बहुत पीछा किया और फिर जरासंध हंसता हुआ कहने लगा कि अरे तुम लोग तो इतना विजय प्राप्त किए, आज हमको पीठ दिखाकर भग रहे हो। भगवान ने एक नहीं सुनी, चले गए प्रश्रवण पर्वत पर। अब प्रश्रवण पर्वत में तो हरदम बरसात होती रहती है, उसने उस पर्वत में आग लगाई। भगवान उस पर्वत से कूद करके बहुत दूर चले गए और सीधे द्वारिका में जाकर उन्होंने विश्राम किया और फिर जरासंध अपनी जगह चला गया। अब इधर आनर्त देश का राजा था रेवत, जो रेवत ब्रह्मा जी के पास गया था कि मेरी बेटी का विवाह होना चाहिए। रेवत है, रेवत नहीं, रेवत है। रेवत का बेटा कुकुदमी था, कुकुदमी गया था ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से जाकर कहा था कि महाराज आपकी सृष्टि में किसके साथ विवाह करूं, तो वो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, तुम मनुष्य होकर के मेरे लोक में आ गए, अब तुम्हारी कन्या का विवाह मेरी सृष्टि वाले के साथ नहीं होगा, किसी अलौकिक व्यक्ति के साथ ही होगा। जल्दी चले जाओ, जल्दी चले जाओ, तुम जाओगे जीते जीते द्वारिका में तुमको बलराम जी मिलेंगे, उसके साथ विवाह कर दो। तो बड़े धूमधाम के साथ बलराम जी का रेवती के साथ विवाह हो गया। अब बड़े भाई का विवाह हो गया, और ध्यान सुने, अब कृष्ण भगवान के विवाहों की कथा चल रही है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहते हैं कि उसके बाद अब आपको बात बतावे, श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। अरे राजन क्या बतावे, रुक्मणी जी के विवाह में बड़े बड़े राजा लोग आए थे, बड़े बलशाली राजा लोग आए थे। उन सब राजाओं का मान मर्दन करके भगवान जिस प्रकार से गरुड़ अमृत को नहीं लाते, ऐसे वे रुक्मणी को ले आए और सब लोग देखते के देखते रह गए। राजा कहने लगे महाराज ऐसे मत कहो, भगवान की हर लीला में अमृत है, भगवान स्वयं अमृत स्वरूप है। थाली से भरा हुआ, थाली के अंदर मिठाई मिठाई है, अब थाली का कौन सा कोर फीका है और कौन सा कोर मीठा है, वो सारी की सारी मिठाई में मीठापन है। तो जैसे भगवान की बाल लीलाओं को आपने विस्तार से सुनाया था, उसमें अमृत का अनुभव हुआ, ऐसे ही भगवान की आपने और लीलाओं का, मधुर लीलाओं का वर्णन किया, उनमें भी अमृत था। तो अब विवाह कथा को भी आप सुनाओ महाराज, विवाह कथा में भी बड़ा अमृत है, और आप बताओ कि वहां बड़े बड़े राजाओं का कैसे उन्होंने मान मर्दन किया है। महाराज आप भगवान श्री कृष्ण की कथा केवल मेरे लिए नहीं सुना रहे हैं, मेरा तो मेरे लिए तो सुना ही रहे हैं, लेकिन लोक मलापहा सारे के सारे लोक में जितने जीव जंतु सबका मैल दूर करने के लिए आप कथा सुना रहे हैं। इसलिए भगवान की विवाह की कथा तो आपको विशेषता से सुनाना चाहिए। सुनी हुई कथाएं, लेकिन जाने क्या बात है, इन कथाओं को सुनते हैं तो नयापन दिखता है। तो जब कथाओं में इतना नयापन है, इतनी सुंदरता है, तो वे स्वयं तो जाने कितने सुंदर होते होंगे। कौन तृप्येत श्रृणवान है, ऐसे भगवान की उन कथाओं को सुनने से किसको तृप्ति होगी। महाराज विस्तार के साथ सुनाओ। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर कह रहे हैं देखो परीक्षित, विदर्भ देश का एक राजा था जिसका नाम था भीष्मक, बड़ा धर्मात्मा पुरुष था और वो भगवान का बड़ा भारी भक्त था। उसके पांच बेटा थे और एक कन्या थी। पांचों भाइयों के बीच में एक बेटी होने के कारण पांचों भाई अपनी बहन के साथ बहुत प्रेम करते थे और महाराज भीष्मक भी अपने बेटी से बहुत स्नेह करते थे। अब विचित्र बात यह थी कि भीष्मक के मन में तो ये बात थी कि मेरी बेटी का विवाह मैं कृष्ण के साथ करूं, लेकिन भीष्मक का जो बड़ा ही बड़ा लड़का था रुक्मी, उसके मन में ये बात थी कि इसका विवाह मैं शिशुपाल के साथ करूं। चारों भाइयों में बड़ा था रुक्मी, इसलिए भाइयों को भी उसने चुप कर दिया, और पिताजी का बहुत वो लाडला था तो पिताजी भी बेचारे चुप हो गए। और अब ये बात तय हो गई कि शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह होगा। ध्यान से सुनना, भगवान की कथाएं सुनते हैं उनका कितना बड़ा विचित्र फल है। इधर रुक्मणी ने अपने महल में आने जाने वाले लोगों से कृष्ण की महिमा को सुन रखा था, और जब ये पता चला कि मेरे बड़े भाई शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हैं, और न चाहते हुए भी अब पिताजी भी सहमत हो गए हैं और मेरे और चार भाई वो भी सहमत हो गए हैं, तब रुक्मणी का चित्त है वो एकदम घबरा गया, और वे घबराए हुए चित्त से मन ही मन में भगवान की शरण चले गए। रुक्मणी जी ने देखा कि क्या करूं, जिस भगवान के विषय में, जिस कृष्ण के विषय में मैंने सुना है, मैं उसे प्रार्थना कर सकती हूं, और इस अबला के पास कोई बल नहीं है। विचार किया कोई न कोई क्रियात्मक उपाय करना चाहिए, तो रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया। ब्राह्मण देवता को बुलाकर ब्राह्मण से बड़े प्रेम से एकांत में कहा, देखो ब्राह्मण, आप हमारे गुरु हो, हमारे पिता हो, मैं आपकी पुत्री हूं, आपको एक बात मेरी सुननी होगी। मैं बहुत दुखी हूं ब्राह्मण देवता, मैं शिशुपाल के साथ कतई विवाह करना नहीं चाहती हूं। आप अभी के अभी रवाना होकर द्वारिका में जाकर श्री कृष्ण से मेरा ये संदेश कह दो, और कुछ मैं आपको लिख कर भी दे देती हूं संदेश, वो आप ले जा करके श्री कृष्ण को पत्र भी दे देना, मुख जबानी भी सुना देना। ऐसी छटपटाहट भावना से जब अपनी बात रुक्मणी ने रखी तो ब्राह्मण देवता को बड़ी दया आई। ब्राह्मण ने देखा कि भाई जिसका विवाह करने जा रहे हैं, कम से कम उससे पूछना तो चाहिए था कि तुम्हारे क्या विचार हैं। पिता के भी मन में जो बात थी वो कम से कम सबके बीच में व्यक्त कर देनी चाहिए थी, लेकिन रुक्मी हठपूर्वक शिशुपाल के साथ विवाह करने जा रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। ब्राह्मण देवता तत्काल रवाना होकर द्वारिका पहुंचे। जब द्वारिका के महल में पहुंचे, भगवान उस समय में एक सोने के आसन के ऊपर गंभीर भाव से विराजमान थे। जब भक्त का हृदय गंभीर होता है, गदगद होता है, उससे रहा नहीं जाता, तो फिर भगवान भी चाहे सोने के आसन पर बैठ जाओ, उनको भी चैन नहीं पड़ती है। इतने में ब्राह्मण देवता वहां पहुंचे। द्वारपालों ने आकर भगवान से कहा कि महाराज, दूर देश से कोई ब्राह्मण आए, आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा, हमारे दरबार में ब्राह्मण को पूछ करके आने की जरूरत ही क्या है, सीधे ही आने दीजिए। ब्राह्मण देवता आए, भगवान आसन से खड़े हुए, बड़ा सम्मान किया। भगवान ने उनको फिर विश्राम दिलाया, भोजन करवाया। भोजन कराने के बाद फिर भगवान ने एकांत में ले जाकर उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप जिस देश में भी रह रहे हैं, क्या वो देश सर्वथा प्रसन्न है? और ब्राह्मण देवता, आपके पास संतोष है तो सही ना, केवल आप यहां मांगने के लिए तो नहीं आए हैं ना? नहीं, ब्राह्मण मांग करके भी देता ही है। दिखने में दिखता है कि ब्राह्मण मांगता है, मांगता नहीं है, ब्राह्मण देता है। ब्राह्मण के पास संतोष रूपी एक धन ऐसा होता है कि उस धन के द्वारा वो बड़ा भारी धनी कहलाता है। देखो ब्राह्मण, असंतोष के कारण से ये स्वयं सुरेश्वर है इंद्र, वह भी अपने लोक से गिरता है, और एक संतोष के कारण से दरिद्री व्यक्ति भी महान आनंद के अंदर पड़ा रहता है। इसलिए ब्राह्मण के पास धन ही, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसीलिए तो निरंकारी ब्राह्मणों को मैं सदा नमस्कार किया करता हूं। हां, अपनी बात चल रही थी, आप किस देश से आए हैं? वहां सब प्रजा आराम से तो रहती है ना, सुखी तो है ना, क्या बात है, आप कुछ उद्विग्न से दिखाई दे रहे हैं। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो आप मुझे बताइए, आपका क्या परिचय, कहां से आए, क्या मुझे आपकी सेवा करनी है? इस प्रकार से जब कहा तो कहते ऐसे भगवान की बात सुनी। अब वो तो भगवान के रूप को देखने लग गए, मन में विचार आया कि ओहो, रुक्मणी जी कहां और कहां ये श्री कृष्ण, मैं किस काम के लिए आया हूं। भगवान को खूब गौर से देखने लग गए वो ब्राह्मण। एवं संप्रष्ट संप्रश्न ब्राह्मण परमेष्ठिना लीला गृहित देहेन तस्मै सर्वम अवर्णयत। ब्राह्मण पहचान लिए कि त्रिलोकीनाथ भगवान है, कहूंगा तो भी ये जानते हैं, और नहीं कहूंगा तो भी ये सब बात जानते हैं, और जिसमें प्रेमियों के प्रेम को तो ये पहले टटोलते हैं, इसलिए इनसे तो कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, मैं विदर्भ देश से आया हूं, वहां की राजकुमारी का विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा है, इस बात को राजकुमारी स्वीकार नहीं करना चाहती है, उसने आपको अपने मन से पति मान लिया है, उसके कुछ संदेश है, वो संदेश लेकर आया हूं। क्या संदेश है ब्राह्मण? महाराज रुक्मणी के शब्दों में आप सुनिए। श्रुत्वा गुणान भुवन दर्शन वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपां दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम् मे। हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने आपके दिव्याति दिव्य रूप को श्रेष्ठ पुरुषों के श्रीमुख से सुना है, तब से एक मेरे मन में ऐसी खलबली मच गई है कि मैं आप ही के साथ प्रेम करूं, और मेरे चित्त में सारी लज्जाएं सारे संकोच समाप्त हो गए हैं, और सारे जगत के बीच में भी मुझे बैठा कर कहा जाए कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो, तो मैं सबको सुनाकर यही कहना चाहती हूं कि मैं त्रिलोकनाथ श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहती हूं। और हे मुकुंद, केवल मेरी ये दशा नहीं है, जो भी कोई कुलवती शीलवती स्त्री होगी और उसमें उसने यदि आपके दिव्याति दिव्य गुण सुन लिए होंगे तो वो भी आपको छोड़ नहीं सकती है। हे नृसिंह, आप संपूर्ण संसार में नहीं संपूर्ण लोक के अंदर सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको चाहती हूं, आपका त्याग नहीं कर सकती हूं, आप ही मेरे स्वामी हो, मैं आपकी स्त्री रहूं, मैंने अपने आप को आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि सिंह के हिस्से को कोई गीदड़ ले जाए और गीदड़ उसको खाता रहे, ऐसा नहीं होवे, ये आप चाहे तो हो सकता है। और हे प्रभु, मैंने किसी प्रकार का कोई पूर्त काम किया हो, कुएं बावड़ी वगैरह खुदाई हो, जन्म जन्मांतर में कोई भी पुण्य किया हो, इस जन्म में कोई यज्ञ वगैरह किए हो, उन सब के फल में मैं एक ही बात चाहती हूं कि आप ही मेरे पति बने, शिशुपाल आदि का मैं मुंह तक नहीं देखना चाहती हूं। और हे प्रभु, शोभाविनी त्वमजितो द्वहने विदर्भान, मैं ये चाहती हूं कि आपका विवाह किस रूप, मैं आपको किस रूप में प्राप्त करूं। जब इन्होंने मेरी भावना को दबा करके शिशुपाल के साथ विवाह करने का प्रयत्न किया है, तो मैं भी यही चाहती हूं कि सब राजाओं के मान मर्दन को करके सबके बीच में आप हर करके अपना पराक्रम करके ऐसे ले जावे जैसी मैं आप ही की वस्तु थी और आपके पास आई हूं। आपके मन में ये बात आ सकती है कि हे रुक्मणी, तुम तो अंतःपुर में रहती हो, महलों में रहती हो, तो मैं कैसे सबके बीच में ले जाऊं। तो महाराज, मेरे यहां की एक परंपरा है, मेरे यहां जिस राजकुमारी का विवाह होने वाला होता है उसको एक दिन पहले हमारे महल से दूर पार्वती जी का मंदिर है, भवानी जी का मंदिर है, वहां पर उसको ले जाया जाता है। उस समय में वो पैदल जाती है अथवा रथ पर बैठ करके जाती है, तो उस समय में वो महल से बाहर निकलती है, और उस समय में आप वहां आना और सबके बीच में आप मुझे ले जाना, ले जाने का स्थान और समय सब मैंने आपको बता दिया है। महाराज, मैं ये जानती हूं कि मैं आपके अनुरूप स्त्री नहीं हूं, लेकिन मेरे मन की तरफ आप देखो, मेरे गुणों और अवगुणों की तरफ आप मत देखो। मैंने तो यही विचार किया है कि यदि आप मुझे इस जन्म में स्वीकार कर लेंगे तो अच्छी बात है, यदि इस जन्म में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं सौ सौ बार जन्म करके आप ही को चाहूंगी और किसी को भी नहीं चाहूंगी, ये आप मेरी निश्चित बात मानिए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ये गुप्त संदेश रुक्मणी ने दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान कहने लगे, ब्राह्मण देवता, कई दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे मन में खलबली मची है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये रुक्मी शिशुपाल के साथ प्रेम करने से मेरे साथ यूं ही द्वेष करने लग गया है। ब्राह्मण देवता, निश्चित मानो, पक्की बात मानो, मेरी बात कभी झूठी नहीं होगी, रुक्मणी मेरी है और मेरी होकर के रहेगी, ये दुनिया में मैं बता के रहूंगा। भगवान ने उस समय में तत्काल दारुक से कहा कि हमारा रथ तैयार करो। दारुक चार घोड़ों वाला रथ तैयार किए हैं, भगवान ने ब्राह्मण को बैठाया और स्वयं भी रथ में बैठे हैं, और बड़े तेजी के साथ उस रथ को द्वारिका से विदर्भ देश की ओर रवाना कर दिया है। और इधर पुत्र स्नेह वसंगत है, वो भीष्मक जी अपने बेटे के स्नेह के अंदर वशीभूत थे, शिशुपाल के लिए अपनी कन्या देने के लिए तरह तरह से वहां पर विवाह की तैयारियां चल रही थी। सारे नगर को सजाया था, सब जगह इत्र वगैरह छिड़के हुए थे, स्त्री पुरुष सब इस विवाह की तैयारियों में लगे हुए थे, देवताओं का, पितरों का, सबका पूजन किया गया, ब्राह्मणों का पूजन किया गया और सब तरह से अब रुक्मणी जी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उनको निलाया जा रहा है, कपड़ा वगैरह पहनाया जा रहा है और तरह तरह के मांगलिक गीत वहां पर गाए जा रहे हैं और संपूर्ण ग्रहों की शांति के लिए वहां पर यज्ञ किया जा रहा है, तरह तरह के दान दिए जा रहे हैं। और इधर चेरी नरेश दमघोष है, वो अपने बेटे के विवाह के लिए बड़े उत्साहित हो रहे हैं। शिशुपाल जी नए नए कपड़े पहनते हुए देखते हैं कि आहा, ये कपड़ा तो बड़ा अच्छा है, हमारा ये अलंकार बड़ा अच्छा है, ये हमारे असाफा बड़ा अच्छा है। ऐसे वो अपने वस्त्रों को देख रहे हैं, हाथी पर बैठे हैं और बड़े उमंग के साथ कि भीष्मक की कन्या के साथ हमारा विवाह होगा, वे कुंडिन क्षेत्र में विदर्भ देश की ओर रवाना हुए। इधर साल्व को पता चला, जरासंध को पता चला, दंतवक्त्र को पता चला, विदुरथ को पता चला और पौंड्रक आदि को पता चला कि अब भीष्मक की कन्या का विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा है, कहीं ये यदुवंशी इस विवाह में बाधा न डाल दें। तो सब के सब सेना लेकर के वह कुंडिन क्षेत्र में आ गए, बहुत बड़ा सेना का जमघट वहां पर लग गया। इधर बलराम जी ने कहा कि ओहो, कृष्ण कितना भोला है, ये देखो हमसे सलाह नहीं किया और सीधा ही अकेला ही रथ लेकर के रवाना हो गया, हमारे पास कोई निमंत्रण भी नहीं है। नहीं, हमारे पास निमंत्रण तो है लेकिन हमसे कोई मंत्रणा नहीं है, कोई सलाह नहीं की, ऐसे ही रवाना हो गया। और हमें तो ये खबर मिली है कि हमारे शत्रु पक्ष के बहुत से राजा लोग वहां सेना ले लेकर पहुंचे हैं, आहो कृष्ण अकेला पड़ गया। बलराम जी महाराज तत्काल एक सेना लेकर के और वे भी बड़े तेजी के साथ उसी कुंडनपुर की ओर रवाना हो गए। और जब वहां पर रवाना हुए, वे भी वहां पर पहुंच गए। इधर बिचारी वो रुक्मणी जी घबरा रही है कि ओहो, कल तो देवी की यात्रा होगी और परसों मेरा विवाह होने वाला है, अब क्या होगा। सब प्रकार से यहां तो तैयारियां शिशुपाल को देने के लिए हो रही है, अब तो बहुत थोड़ा सा समय है, कमल नेत्र भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी भी है कि नहीं सुनी है, ये निश्चित बात है कि मैं उनके योग्य नहीं हूं, लेकिन ये भी तो निश्चित बात है कि मैं शिशुपाल के लायक थोड़े, शिशुपाल भी तो मेरे लायक नहीं है, क्या करें। अभी तक जिस ब्राह्मण को मैंने संदेश देकर भेजा था वो ब्राह्मण भी तो नहीं आए हैं। मत प्राणी ग्रहणे नूनम नायाति कृतोद्यम है, आहो मेरे जीवन से शायद उनको घृणा हो चुकी होगी, वो एक जन्म का जीवन देखने वाले नहीं है, न जाने मेरे कितने जन्मों का पाठ उनके सामने खुला होगा, अतः उन्होंने मुझे नापसंद कर दिया होगा, इसलिए मैं बड़ी दुर्भाग्यशालिनी हूं। हे महादेव आप कृपा करो, हे देवी आप कृपा करो, हे गौरी आप कृपा करो, और मेरे आप किस समय में यहां कोई अपना नहीं है, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है, मेरे भाई बंधु माता पिता सब मुझसे अलग हो गए हैं, सब मेरी भावना को कुचल रहे हैं, भगवान महादेव आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। इस प्रकार से वे कृष्ण के लिए लालायित होने वाली रुक्मणी प्रार्थना कर रही हैं। इतने में ही उनका बायां नेत्र फड़का और नेत्रों से उनके आंसू आने लगे और उनके कमरे के अंदर वो ब्राह्मण देवता तत्काल प्रवेश किए। ज्यों ही वो ब्राह्मण देवता वहां पर पहुंचे तो बड़े हर्ष के साथ में रुक्मणी जी ने पूछा, क्या ब्राह्मण देवता, क्या बात है। हंसते हुए ब्राह्मण देवता ने कहा कि रुक्मणी जी तुम्हारे समान संसार में कोई भाग्यशाली नहीं है, वह तो संदेश सुनते ही आए नहीं है, मैं स्वयं उनके साथ आया हूं, माने मेरे साथ तो तुमने संदेश दिया था और वे तो संदेश की जगह आज स्वयं खुद ही आ गए हैं, इसलिए आप उनकी उदारता पर विचार करो। तस्या आवेदयत प्राप्तम, इतनी प्रसन्नता हुई रुक्मणी जी के मन में। रुक्मणी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता मैं आपका ये एहसान कभी चुका नहीं सकती, ये आपका ऋण मेरे पर ऐसा है चुका नहीं सकती, क्या दूं मैं आपको, यदि आपको कोई मणियों की माला दूं तो वो भी कृष्ण के प्रेम के सामने तुच्छ है, जो आपने लाकर मुझे देने का प्रयास किया है उसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूं, केवल आपको हृदय से नमस्कार कर सकती हूं। इधर भीष्मक को पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम आए हैं, ओहो बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथ में वो सामग्री लेकर के आया पूजा की, और आकर के बलराम और श्री कृष्ण की उन्होंने पूजा की और तरह तरह के वस्त्र और भेंट, वस्त्र और दूसरी वस्तुएं भेंट की, उपायनानी अभिष्टानी विधिवत समपूजय, सब प्रकार से उनकी पूजा की। सारे कुंडिनपुर में मालूम चल गया कि कृष्ण और बलराम आए हैं, अब तो लोग उनके दर्शनों के लिए टूट पड़े, भीड़ की भीड़ लग गई, बड़े बड़े राजा लोग भी आए दर्शन करने के लिए। और जो ही श्री कृष्ण का स्वरूप वे देखते हैं तो सबके मन में यही आता है, आहो अस्य भार्या भवितुम अर्हति रुक्मणी, क्या गलती कर रहे हैं राजा, यदि इनको रुक्मणी का विवाह करना ही था तो इसी कृष्ण के साथ करना चाहिए था, लेकिन होनार को भाई नमस्कार, जो होने वाली बात होती है जो होती है, जिसके योग्य जो है वो मिलता है नहीं मिलता है दोनों ही बात है। आज तक हमने अपने जीवन में कोई भी पुण्य किया है तो हे त्रिलोकीनाथ भगवान, आप हमारे सत्कर्मों के फल से इस रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ कर दो, हम हमारे पुण्यों का और कोई फल नहीं चाहते, ऐसे लोगों के मन में भाव पैदा हुए। रात बीती और दूसरे दिन रुक्मणी जी को अपने महल से रवाना होकर पार्वती जी के दर्शन करने आना था। रुक्मणी जी ने कई ब्राह्मणियों से घिरी हुई होकर, सखियों से घिरी हुई होकर, बहुत से सैनिकों से घिरी हुई होकर और बड़े उत्साह के साथ में एक जनसमुदाय को लेकर वे भवानी के मंदिर में पहुंची हैं। सैकड़ों सैकड़ों स्त्रियां हैं, तरह तरह के उनके पास उपहार हैं, गाने वाले बजाने वाले सूत माघद बंदी सब आगे चल रहे हैं और रुक्मणी जी उस सारे समुदाय के बीच में चल रही हैं। उस समय में सैनिक लोगों ने अपने शस्त्र निकाल रखे हैं, तलवारें उनके हाथ में, ढाल उनके हाथ में, चारों तरफ उनकी दृष्टि है कि कहीं किसी प्रकार रुक्मणी पर कोई विपत्ति न आ जाए, जो कि राजकुमारियों के लिए कायदे की बात है, सब वो बात हो रही थी। रुक्मणी जी भवानी के मंदिर पर पहुंची, मंदिर के सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी और जाकर के रुक्मणी जी ने मंदिर में भवानी को प्रणाम किया। साथ में जो ब्राह्मण पत्नियां थी उन्होंने आदेश दिया कि बेटा अब तुम कुमकुम चढ़ाओ, अब तुम चावल चढ़ाओ, अब तुम रोली मोली चढ़ाओ, जैसे उनकी आज्ञा थी वैसे वे करते रहे। और अंदर ही अंदर रुक्मणी जी के आंखों से आंसू आ रहे हैं, रुक्मणी जी प्रार्थना कर रही हैं कि हे भवानी जी, आप भी याद करो आपने शंकर जी के लिए कितना कितना कष्ट उठाया था, कितनी आपने तपस्या की थी, उसी प्रकार से मैं भी कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहती हूं, आपका यदि अनुमोदन हो गया तो फिर मेरे इस प्रेम, मेरे इस विवाह में, मेरे इस मनोरथ में कोई बाधा आने वाली नहीं है। भूयात पतिर में भगवान, हे भवानी जी मैं प्रार्थना करती हूं मेरा पति एकमात्र कृष्ण ही होना चाहिए। आप अपने आंसुओं को चुपचाप उन्होंने पूछ लिया, किसी को कुछ भी नहीं बताया, पूजा करती रही। और फिर उसके बाद ब्राह्मण पत्नियों की भी पूजा की, मंदिर की परिक्रमा की, और परिक्रमा करके और फिर सबको नमस्कार करके वह उन पेड़ियों से धीरे धीरे उतर रही थी। और परीक्षित ऐसी सुंदर साड़ी पहन रखी थी, वो साड़ी उनके वो कपड़ा पहन रखा था, वो कपड़ा उनके चेहरे को ढका हुआ था, और उसमें से उन्होंने चारों तरफ दृष्टि डाली कि श्री कृष्ण का रथ कहाँ है, श्री कृष्ण कहाँ है, मन से वो देख रही थी, किसी को भी पता न चले, इसलिए वो देखती भी थी फिर नीचे देखने लग जाती थी, फिर देखती थी फिर नीचे देखने लग जाती थी। ओहो रुक्मणी की क्या हम शोभा का वर्णन करें, वो रुक्मणी जी मानो देवताओं से बनाई हुई कोई माया ही हो, देव माया ही क्यों ना हो। बहुत अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, अच्छे अच्छे अलंकार पहन रखे हैं, उनके हाथों के अंदर रत्न जड़ित मुद्रा थी, एक अंगीठी थी वो भी उन्होंने पहन रखी थी अंगूठी, और वो मुस्कुरा रही थी, इधर उधर देख रही थी। पदा चलंतिम कलहंस गामिनी, एक कलहंस के समान धीरे धीरे अपना पैर रख रही थी और जो जो वो पैर एक एक पेड़ी से नीचे रखे त्यों ही उनमें से झंकार होता था, आभूषण सब एक साथ ध्वनि करते थे। रुक्मणी जी के इस रूप में सब लट्टू हो गए थे। उन सैनिकों को ये पता ही नहीं है कि हम सैनिक हैं, तलवारें उनकी हाथ की हाथ में रह गई, मुंह उनका फटाका फटाका फटा ही रह गया। और यांबिक्षते नृपतयस्त्र तदुदार हास ब्रीडावलोक हृतचेत स उज्जितास्त्र, क्योंकि अस्त्र शस्त्र थे वो हाथ से गिर गए। कई लोग तो यूं देखते 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 अचेत होकर गिर गए, और वो सनैश चलंत धीरे धीरे वो चल रही थी। उसको तो भगवान की बड़ी प्रतीक्षा थी, देखा कि अभी तक वो नहीं आए, और अब मेरे और रथ के उस रथ के बीच तक आ गए तो ठीक है, अन्यथा अब तो कृष्ण से मिलना कैसे होगा। बहुत घबरा रही हैं, बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। सब कह रहे हैं कि राजकुमारी जी थोड़ा जल्दी चलिए, थोड़ा पैर बढ़ाइए। पर राजकुमारी जी के पैर तो कहां बढ़ेंगे, जहां मन बढ़ रहा है वहीं बढ़ेंगे ना, इसलिए वो धीरे 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 चल रहे हैं। इतने में ही देखा कि एक बहुत तेजी से रथ आ रहा है, जन संवर्धन को अलग कर रहा है, भीड़ को अलग कर रहा है, चीरता हुआ वो आया और अकस्मात आकर के रुक्मणी जी के पास में ठहरा। और रुक्मणी जी ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा, तत्काल भगवान ने रुक्मणी जी को अपने रथ में बैठाया, सांप को चीरते हुए भगवान उसको ले गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सब सैनिक देखते रह गए, रुक्मणी कहां, रुक्मणी कहां, कहां गया वो रथ, कहां गया। इतने में तो रथ कितनी दूर आगे चला गया, इतने वेग से वो रथ गया था। रुक्मणी जी भी बैठी हुई सब देख रहे हैं, लेकिन सब ने घोड़ों के उस टाप से और उसके वेग से भयभीत होकर रास्ता दे दिया, और भगवान बहुत दूर चले गए। लोग कहने क्या बात हुई, रुक्मणी जी हमारे सामने ही किसी के द्वारा ले जाई गई, अहो धिगस्मान, धिक्कार है हमको, शस्त्र कहां गया हमारा, किसी की तलवार कहीं पड़ी है, किसी की कहीं पड़ी है, सब पड़ी हुई तलवार उठाते हैं और अब अपनी बहादुरी दिखाने के लिए हम जाते हैं, हम जाते हैं, ये बात हो रही थी। उतने बहुत दूर चले गए। इस प्रकार से जब बहुत दूर गए, मालूम था कि इसी रास्ते से जाएंगे, तब ये दूसरे राजा लोग, सैनिक लोग विचार करने लगे क्या करना चाहिए। तो उस समय में बहुत बड़ी सेना भगवान के पीछे गई, भगवान के पीछे गई तो बिचारी रुक्मणी जी डर गई। रुक्मणी जी डरती हुई भगवान से कहने लगे कि महाराज अब क्या होगा। भगवान ने कहा कि देखो मास्म भाई, आपको किसी प्रकार से भयभीत होना नहीं चाहिए। अब जो हमारे शत्रु हमारे सामने आएंगे, हम उन्हें अपने आप सलट लेंगे। कहते हैं उस समय में भगवान चले जा रहे हैं, पीछे आए सैनिक। इधर बलराम जी महाराज ने अपनी सेना को ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया था कि जहां से मोर्चा लेना बड़ा स्वाभाविक था। अब उन सैनिकों को बलराम जी महाराज की सेना तहस नहस करने लगी। लोग गए शिशुपाल जी के पास। अब शिशुपाल को देखे तो मुंह लटकाया हुआ बैठा है, लंबी लंबी श्वास ले रहा है। क्या बात है भाई, अब क्या करें। शिशुपाल जी तो जोर जोर से रोने लग गया कि क्या करें, किसी का तो क्या गुमता है, किसी का क्या नष्ट होता है। हमारी स्त्री को तुम्हारे सबकी आंखों में धूल डाल करके एक वो ले गया, तो एक वो कृष्ण ले गया, और आप सब लोग देखते के देखते ही रह गए। वो बहुत दुखी हो गए शिशुपाल। तब राजा लोग आए, कहने लगे अरे शिशुपाल जी, ये राजाओं को इस प्रकार से दुखी नहीं होना चाहिए। हम तो देखो, जरासंध ने कहा हम तो 17 बार उसकी मार खाए, फिर 18वीं बार में विजयी हो गए, तुम भी ले हो सेना और चले उसके साथ युद्ध करने में। शिशुपाल जी ने कहा मैं तो युद्ध करने नहीं जाऊंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। रुक्मी फिर सेना लेकर के, रुक्मणी का जो भाई था वो सेना लेकर के तैयार हुआ, सबके बीच में प्रतिज्ञा की कि देखो आप सब लोग मेरी प्रतीक्षा करना, या तो मैं कृष्ण को जीत करके रुक्मणी को ले आता हूं, या और यदि मैं नहीं लाऊं तो आपके इस कुंडन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा कहकर के वो रुक्मी सेना लेकर के गया। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उसने शस्त्र डाले, कहते हैं भगवान ने ऐसे बाण मारे, ऐसे बाण मारे कि उसके रथ सारथी सब तहस नहस हो गए, सेना भी तहस नहस हो गई। भगवान उचक करके जाकर के उस रुक्मणी को पकड़ लिए और अपने हाथ से तलवार से उसका सिर काटने के लिए तैयार हुए। इतने में रुक्मणी ने चरण पकड़ लिए कि महाराज महाराज बचाओ बचाओ, आखिरी मेरा भाई है और आप मेरे सामने इसे मार रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। भगवान ने तत्काल अपने कपड़े से उसको रथ से बांध लिया और बांध करके रवि ले जाने लगे। इतने में ही बलराम जी आ गए। अब देखो बलराम जी ज्ञान देने में तो बहुत होशियार हैं। अब बलराम जी आए और बलराम जी ने देखा कि क्या करना चाहिए, तो देखो कुटुंब में दो आदमियों के बीच में यदि नाराजगी हो जाए तो उनको आपस में यदि कभी मिलाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी बात उसको कहते हैं, थोड़ी बात उसको कहते हैं, ताकि दोनों के बीच में संतुलन बना रहे। तो बलराम जी ने एक बात तो कही कृष्ण को और एक बात कही रुक्मणी को, फिर एक बात कही कृष्ण को और एक बात कही रुक्मणी को। कृष्ण भगवान से कहा, देखो कृष्ण ये अच्छा नहीं किया। भगवान ने क्या किया कि रुक्मणी के सारे रुक्मी के जितने केस थे वो अपने तलवार से काट दिए, रुंड मुंड बना दिया था। तब कहा कि देखो अपने 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 आत्मीय लोगों को, सगे संबंधियों को अपने हाथ से रुंड मुंड कर देना, ये उनका बड़ा भारी अपमान है, ये मारने के समय में ऐसा नहीं करना चाहिए। तब देखा कहीं रुक्मणी ऐसा न समझने लग जाए कि अरे इनके परिवार में तो ये कृष्ण के अंदर दोष देख रहे। तो फिर रुक्मणी की तरफ कहने, देखो रुक्मणी तुम्हारे भाई को इन्होंने कुरूप किया है, इस बात का दोष तुम्हारे मन में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को सुख दुख कोई दूसरा देने वाला नहीं है, स्वकृत भूख वह अपने ही किया हुआ भोगता है, इसलिए इसके किसी पाप के फल से ही इसको ऐसा देखना पड़ा है। फिर कृष्ण से कहा कि देखो भाई बंधु वधार दोषोपि, यदि कोई हमारा भाई बंधु भी वध के योग्य हो तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए। रुक्मणी से कहा, देखो रुक्मणी क्षत्रिय बहुत कठोर होते हैं, जिस समय में युद्ध में खड़े होते हैं उस समय भाई बंधुओं को किसी को भी नहीं गिनते हैं, वहां पर जो बाण के सामने आएगा वो नष्ट हो ही जाएगा। फिर भगवान की तरफ कहा कि देखो किसी को मारना होता है तो या तो राज्य के लिए होता है, या भूमि के लिए होता है, या स्त्री के लिए होता है, या मान के लिए होता है, या पराक्रम के लिए होता है, उसके लिए तो मारा जाता है, पर उसमें भी आत्मीय लोगों को नहीं मारा जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर रुक्मणी से कहा, देखो रुक्मणी मरता कौन है, मरता आत्मा तो मरता है नहीं, शरीर मरता है, और शरीर तो एक दिन यूं ही मरेगा, मारेगा तो मरेगा नहीं तो नहीं यूं भी मरेगा, मारने से भी वही मरता है जो मरने वाला है, इसलिए देह आद्यंतवान एष है, यह शरीर तो मरने ही वाला है, इसलिए शरीर को लेकर के कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा उदित होता है ना, चंद्रमा में तरह तरह की कलाएं पैदा, 16 दिन तक उसकी कलाएं घटती हैं, 16 दिन तक बढ़ती रहती हैं, लेकिन चंद्रमा तो वो का वही रहता है। ऐसे ही पैदा होना बढ़ना घटना ये सब शरीर का होता है, आत्मा का कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आत्म तत्व पर विचार करो और कोई चिंता मत करो। देखो हमारे विवाह के समय में पति पत्नी को जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा यहां बलराम जी महाराज ने दे दी है। इस प्रकार से रामेण प्रतिबोधिता बलराम जी के द्वारा शिक्षा मिली, तो रुक्मणी जी के मन से सब प्रकार का कोई भाव था वो भाव समाप्त हो गया, और अब भगवान जो है वो द्वारिका के लिए रवाना हो गए। रुक्मी को छोड़ दिया गया, रुक्मी ने देखा कि कुंडिनपुर तो जाना नहीं है, उसने भोजघट नाम के स्थान पर अपना जाकर निवास बना लिया। अब भगवान जब जो ही द्वारिका में आए हैं, द्वारिका वालों को मालूम चला कि संसार के सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके रुक्मणी को लेकर भगवान आए हैं, तो सब ने धुंधवियां बजाई, फूलों की वर्षा की, और क्या बतावे, द्वारिकायाम अभूत राजन महामोदय पुरोक साम, द्वारिका के अंदर बड़ा भारी एक उत्सव किया गया, और इस उत्सव के अंदर अग्नि की साक्षी में विधि पूर्वक रुक्मणी के साथ भगवान का विवाह हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब इन्हीं रुक्मणी जी के गर्भ से भगवान वासुदेव के अंश से कामदेव ने जन्म लिया, और जन्म लेते समय में इनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। कहते हैं ये प्रद्युम्न जी अपने सूतिका गृह में थे, इतने में ही शंबरासुर आया। असल में शंबरासुर को यह मालूम चला था कि कृष्ण का जो लड़का होगा उसके द्वारा मेरी मृत्यु होगी, तो शंबरासुर है वो बड़ा मायावी था। भगवान श्री कृष्ण के महल में जहां प्रद्युम्न जी छोटे से थे और जहां पर पलना में पड़े थे, उनको पलने से उठा लाया चुपचाप, और ला करके उसने समुद्र में डाल दिया। देखो मृत्यु टलती नहीं है, समुद्र में डाल दिया तो समुद्र में एक मछली थी, मछली ने उसको खा लिया। इधर एक मछुए ने अपने जाल के अंदर कई मछलियों को पकड़ा, तो उसमें वो मछली भी आ गई जिसके पेट में प्रद्युम्न जी गए हुए थे। अब वो मछुआ ले जा करके और एक बड़ी अच्छी देखा कि मछली बड़ी अच्छी है, इसको तो राजा को देना चाहिए, तो ले जा करके शंबरासुर को दे दिया। शंबरासुर ने देखा कि मछली बहुत अच्छी है, तो अपने रसोइये से कहा कि भाई आज इसी का ही भोजन बनाया जाए। रसोइये ने वो मछली ली और जो ही उसको चीरने लगे, छोटा सा बालक मिला, तो वहीं पर एक नौकरानी रहती थी, उसने कहा बालक तो हमको दे दो और मछली है इसका भोजन बना के राजा को दे दो। अब वो नौकरानी वहां बनी हुई थी, वो मायावती के नाम से थी। नारद अकथयत सर्वम, नारद ने पहले कह दिया था कि संबरासुर के रसोई में ऐसी ऐसी मछली आएगी, उसमें एक बेटा मिलेगा, वही तुम्हारा पति होगा। ये रति ही मायावती थी। तो उस मायावती ने उस बालक को अपने गोद में रखा, पाला पोसा, थोड़ा बड़ा हुआ। बड़ा हुआ तो उस रति की ऐसी चेष्टाएं, मायावती की ऐसी चेष्टाएं होने लगी जैसे पत्नी करती है। तब उस प्रद्युम्न ने पूछा कि भाई आपने मां के समान तो मेरा पालन किया है और चेष्टा में आप स्त्री के समान कर रहे हो, बात क्या है? तब कहा देखो आप तो साक्षात कामदेव हो और मैं रति हूं, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी स्त्री हूं, आप नारायण के बेटा हैं, शंबरासुर आपको हर के लाए हैं, अब शंबरासुर को जीतने के लिए मैं आपको तरह तरह से विद्याएं सिखा देती हूं ताकि आप शंबरासुर से लड़ सके। तो तरह तरह से उन्होंने माया सिखाई, असुरों की माया तो चले नहीं और आपकी माया उन पर चल सके। इस प्रकार से मायावती ने उनको सब प्रकार की विद्या सिखा दी और अब शंबरासुर का प्रद्युम्न का युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर शंबरासुर का सिर काट दिया गया और रति ने चुपचाप इसको प्रद्युम्न जी को वहां द्वारिका में भेज दिया। द्वारिका में भेजा, अभी एकदम कृष्ण के सकल जैसा। कहते हैं वहां पर द्वारिका में जो ही पहुंचा है, रुक्मिणी ने उस बालक को देखा, कृष्ण भगवान भी वहीं खड़े हैं, नारद जी भी खड़े हैं, वसुदेव जी भी हैं। कहते हैं उस बालक ने, बालक से कहा गया कि तुम प्रणाम करो इनको, बालक ने प्रणाम किया। तो भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही थे, नारद जी भी जानते ही थे। उस समय में रुक्मिणी के मन में आया कि ओहो मेरा एक लड़का था, यदि वो आज जीवित होता तो ऐसी कैसी आकृति वाला होता। ननु अयम नर वैदुरी है कश्य वा कमलेक्षण है, किस पुण्यशाली स्त्री का तो ये लड़का है और किस पुण्यशाली व्यक्ति का ये लड़का है। धृतय कया वा जठरे केयम लब्धा त्वनेन वा, ये किसको प्राप्त हुआ है, किसका भाग्य जगा है। सूतिका गृह से मेरे लड़के को न ले जाया गया होता तो ऐसा कैसा मेरा लड़का होता। इस प्रकार से सोच रहे थे तो भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि यदि यही तुम्हारा लड़का हो तो, क्या महाराज मेरा तो लड़का गुम गया और आपको विनोद सूझता है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, ये आपका बेटा है, आप अपने बेटे को ही नहीं पहचानती, हम बात कहते हैं वो सत्य है। भगवान ने कहा देखो, नारद जी ने बात कह दी वो सत्य है। फिर नारद जी ने कहा देखो रुक्मिणी जी, शंबरासुर को इस प्रकार से मारा गया है, ये बात है। जब ये बात सुनी तो सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर ये प्रद्युम्न जी वहां पर रहने लगे। ऐसे थे प्रद्युम्न जी भगवान की शक्ल सूरत में कि जब कभी अकस्मात वो माताओं के बीच में पहुंच जाते तो वे माताएं सोचती थी कि कहीं कृष्ण तो नहीं आ गए, बाद में पता चलता कि वो हमारे प्राणनाथ नहीं है, ये हमारा बेटा ही है। कि महाराज भगवान ने एक विवाह तो किया नहीं था, और भी तो विवाह किए थे, जरा और कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो हम और कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, सत्राजित ने कृष्ण का कोई अपराध किया, इस कारण उस अपराध के बदले में सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। और श्यमंतकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान, और फिर आगे जाकर श्यमंतक मणि थी वो भी उन्होंने दे दी। राजा कहते हैं महाराज ये श्यमंतक मणि क्या है और सत्राजित ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि जिससे सत्यभामा को देना पड़ा। कहते हैं देखो सत्राजित था ये सूर्य का भक्त था, सूर्य ने उसको एक मणि दे दी और वो मणि भाई बहुत श्रेष्ठ मणि थी। वो मणि को पहन करके द्वारिका में आया तो लोग देखते थे कोई सूर्य भगवान आ गए। तो भगवान से भी जाकर कहा महाराज सूर्य भगवान दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा नहीं सूर्य नहीं है, ये तो सत्राजित है जो मणि लेकर आया है। भगवान ने फिर कहा सत्राजित से कि सत्राजित जी ये मणि हमको दे दो ना। क्यों महाराज? अरे तुम्हारे पास मणि रहेगी तो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा, हमारे यहां मणि रहेगी तो सब प्रजा के काम आएगी। बात क्या थी मणि में कि ये मणि है रोज 8 भार सोना देती थी। 8 भार माने 64 मण सोना, एक एक भार में 8 मण और 8 भार में 64 मण, 64 मण सोना रोज देती थी वो मणि। भगवान ने कहा ये मणि हमारे यहां रख दो। ध्यान सुनना, ये मणि का प्रसंग है, सबका सबके मुंह में लार आ जाएगी, सब इसके पीछे लट्टू हो जाएंगे। भगवान ने कहा ये हमको दे दो। तो उसने कहा कि नहीं जी, क्या करेंगे, हमारे पास ही पड़ी है महाराज, हम तो आपकी प्रजा हैं, अब आपकी चीज है वो सब प्रजा की है, हमारी चीज है वो भी आपकी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कर ली और मणि को तो दिया नहीं। असल में राजन वो मणि थी, उसके रहने से कोई अकाल नहीं पड़ता था, सर्प है व्याधि है इनकी कोई किसी प्रकार से प्रजा में संभावना ही नहीं रहती थी, लेकिन उसने तो दी नहीं। एक दिन की बात है कि सत्राजित ने वो मणि अपने घर में लटका रखी थी, तो प्रसेन नाम का उसका छोटा भाई था, वो उस मणि को पहना, पहनते ही विचार आया शिकार खेलने चले, तो शिकार खेलने चला गया। तो शिकार खेलने के लिए गया तो बीच में एक सिंह मिल गया, सिंह ने सत्राजित, सिंह ने प्रसेन को भी मार दिया और घोड़े को भी मार दिया, और मार करके वो मणि लेकर के रवाना हुआ तो एक पर्वत के बिल में चला गया, पर्वत की गुफा में चला गया। पर्वत की गुफा में गया तो वो मणि चमके वहां, तो वहां पर पहले से जामवंत जी बैठे थे, उनका कि मणि तो बहुत अच्छी है, तो वे लड़ झगड़ करके उस हाथ उस सिंह को मार दिए और मणि अपने कब्जे में कर ली। इधर सत्राजित ने देखा कि मेरा भाई मर गया, क्या बात है, तो अब वो कृष्ण से डरता भी था, अपने एक दो आत्मी लोगों से कहा कि क्या बतावे, ये मणि के लिए मेरे भाई को कृष्ण ने मरा दिया। क्यों भाई, कि उसने मेरे से मणि मांगी मैंने दी नहीं, तो मेरे भाई को भी मार दिया और मणि कृष्ण ने ले ली। ऐसे एक दूसरे को कुछ कहा, कानाफूसी होते 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 ये महल में श्री कृष्ण को मालूम चली। कृष्ण कह रहे भाई हमारे पर यूं ही दोष लगाते हो। कृष्ण भगवान ने उस समय में द्वारिका के अच्छे अच्छे आदमियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके और कहा कि चलो अपने सब लोग मणि को ढूंढते आओ मेरे साथ। मणि को ढूंढने के लिए निकले, जहां तक वो घोड़ा गया, घोड़ा का खुर देखते देखते वहां पर अब घोड़ा मरा हुआ दिख आया, और यहां हाथ वो वहां सिंह का पंजा देखा, फिर सिंह के पंजे को देखते देखते गए, ओहो इस पर्वत की गुफा में गया है सिंह। अच्छा आप लोग तो बाहर रहो और मैं अब अंदर जाता हूं। भगवान उस गुफा के अंदर गए, अंदर गए तो वहां पर छोटे छोटे बच्चा थे, वो छोटे बच्चे उस मणि से खेल रहे थे, सारी गुफा मणि से जगमगा रही थी। जो ही भगवान अंदर प्रवेश किए तो वे छोटे छोटे बच्चा रोने लगे, और वो धाय मां थी वो भी जोर से चिल्लाने लगी, अरे कौन आ गया हमारी गुफा में, कौन आ गया कौन आ गया, ऐसे हल्ला किए। भगवान वहां पर खड़े रहे। इतने में जामवंत जी आए, जामवंत जी आए, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कौन है मैं कौन हूं, कोई परिचय दिया नहीं, और भगवान को आते ही सीधा धक्का देने लगे। उसने कहा ये मणि खोसेंगे हमसे, निकलो यहां से, निकलो यहां से, क्यों आए बिना पूछे क्यों घुस गए, ऐसे करके धक्का देने लगे। भगवान ने कहा भले आदमी थोड़ा सुन तो से, हम नहीं सुनते, हमारे घर में क्यों आए, हम नहीं सुनते, नहीं सुनते, नहीं सुनते, सुनते क्या। तो फिर भगवान ने भी उनके साथ में युद्ध करना चालू किया। भाई कोई एक दो दिन का युद्ध था नहीं, वो 28 दिन तक आपस में युद्ध होता रहा। भगवान ने लातों से और मुक्कों से जामवंत जी को मारते 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 एकदम घायल कर दिया, उनको घायल कर दिया। फिर जामवंत जी ने पूछा कि अच्छा 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 बताओ आप कौन है, कि मैं रामावतार वाला कृष्ण, मैं रामावतार जो उसने धारण किया था वही मैं हूं, और इस समय में कृष्णावतार में हूं, मेरा नाम राम है और मेरा नाम कृष्ण भी है। ओहो आप राम है, ओ तभी मैं देखता था कि ये रावण आदि युद्ध करते हैं और युद्ध करते हैं, आपसे मर कैसे जाते हैं, मैंने आपके बल का अनुमान उस समय में और ढंग से लगाया था और अब हमको अनुमान और ढंग से ही लग रहा है, इसीलिए समुद्र ने डर करके आपको रास्ता दे दिया, पुल बनाने के लिए आज्ञा दे दी, इसीलिए आपके क्रोध से सब ये मगरमच्छ वगैरह सब घबराए थे। महाराज मुझे पहचाने कि नहीं, आपको तो मैं पहचान गया, अरे मेरे द्वारा आपको पहचानने में टाइम समय नहीं लगता है, कोई गलती नहीं होती है, आप ही मुझे पहचानने में देरी करते हो, उसका मैं क्या करूं, आप वही जामवंत जी हैं। अब जामवंत जी उनके चरणों में गिर गए, कहने लगे महाराज ऐसा है आपने मार भी खूब दे दी है, तो हमारी मार थोड़ी ठीक भी कर दो। तो भगवान सारे शरीर में बड़े प्रेम से हाथ फेरे तो एकदम स्वस्थ हो गए, पहले की भी बीमारियां थी बुढ़ापे की वो भी खत्म हो गई, एकदम स्वस्थ हो गए जामवंत जी। जामवंत जी ने कहा महाराज ये हमारी जामवती नाम की कन्या, इस कन्या को आप ले जाओ और ये मणि भी आप ले जाओ, हम क्या करेंगे, हम तो पर्वत की गुफा में पड़े, ठीक है। मणि भी दे दी और जामवती को भी दे दिया। इधर क्या हुआ कि पर्वत के गुफा के बाहर कई दिन तो वे आदमी खड़े रहे, एक दिन, दो दिन, पांच दिन, दस दिन, ग्यारह दिन, बारह दिन, तेरह दिन तक खड़े रहे। उन्होंने देखा कि अरे कोई आदमी बारह दिन तेरह दिन के बाद तो मरा हुआ ही वापिस नहीं आता, अब कृष्ण वापिस क्या आएगा, तो वे सब लोग लौट गए। वहां जाकर के रोने बिलखने लगे कि ओहो क्या करें, कृष्ण तो वापिस आए नहीं, शायद वो खत्म हो गए होंगे, ये है वो है। अब देव, अब वहां दुर्गा के मंदिर के सामने वसुदेव जी हैं, सब बैठे हैं, बड़े बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। इतने में ही भगवान जाम्बवती को लेकर और मणि को लेकर उनके बीच में प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान ने वो मणि सबको दिखाते हुए कहा, देखो भाई जाम्बवती आई है, जाम्बवान की लड़की है, और इसी के पिता ने हमको ये मणि दी है। क्यों भाई? कि हां महाराज, मणि को और इस कन्या को हमें दिया है। सबके बीच में उन्होंने वो मणि बता दी, और मणि बता करके और कहा, देखो सत्राजीत जी, इस प्रकार से किसी पर झूठा दोषारोपण नहीं करते हैं, ले जाओ ये अपनी मणि। क्या महाराज, बड़ी भारी गलती हो गई। अच्छा मणि तो ले जाओ, और रोज जो 64 मण सोना देती है वो 64 मण सोना हमारे खजाने में जमा कराओ, और ये मणि तुम रखो। मणि उसको दे दी, और वयंच फल भागिन, हम इसका फल ले लेंगे। इधर क्या हुआ, कई दिन तो बीत गए, और पांडव वास्तव में लाक्षागृह में जले नहीं थे, भगवान को खूब मालूम था, लेकिन धृतराष्ट्र यदि इस बात से संतोष करता हो कि पांचों पांडव मर गए, तो वो उसने नकली बैठक मनाई अपने हस्तिनापुर में। अब राजा लोग आकर के मिलने लगे, तो भगवान भी वहां गए। भगवान ने कहा, हाँ जी धृतराष्ट्र जी, ये तो बात बहुत बुरी हो गई, ये पांचों पांडव बेचारे कुंती के बेटा सब मर गए, बहुत बुरी हो गई। ऐसा वो बैठने के लिए वहां पर गए। थोड़ी देर भगवान भी कुछ बोल लिए, कहा कि नहीं कृष्ण, थोड़ा दिन तुमको यहां रहना चाहिए, अब पांडवों के बिना मेरा हृदय जल रहा है, कृष्ण तुम्हारी बातों से हमको बड़ी शांति मिलती है, तुम यहां रहो। कृष्ण का, अच्छा धृतराष्ट्र जी, हम आपके शांति के लिए, आप कहो, उतने दिन आपके पास बैठे हैं। अब वो अपने मन में होशियार समझ रहे हैं, भगवान अपने मन में होशियार है। कुछ दिन भगवान वहां रहे। इधर देखो, उस मणि के द्वारा दिमाग खराब हो गया अक्रूर जी का। अभी अक्रूर जी तो कितनी भगवान की स्तुति किए थे, अक्रूर जी के मुंह में पानी आ गया कि आहा, ये मणि हमको मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। अब अक्रूर जी और कृतवर्मा दोनों ने मिलकर के शतधन्वा को बुलाया और कहा कि देखो भाई शतधन्वा जी, बड़ी विचित्र बात है, ये सत्राजित है, इसने अपनी कन्या और मणि हमको देने के लिए सोची थी, अब ये सत्राजित है, इसने कन्या तो दे दी सत्यभामा को, दे दिया कृष्ण को, लेकिन मणि इसके पास पड़ी है, तो ये मणि अपने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। सद्धन्वा ने कहा कि आज की बात, कृष्ण तो यहां है नहीं, रात को गए वो महल उसके स्थान पर जहां पर वो सो रहा था सत्राजित, जाके कहा मणि देते हो हम तुमको मारेंगे। उसने कहा मणि तो नहीं देते, मणि नहीं देता, हम तुमको मार देंगे। उसको मार दिया, मार करके सद्धन्वा मणि ले आया। इधर दूसरे दिन सत्यभामा को मालूम चला कि मेरे पिता को मार दिया है, वो तत्काल रथ लेकर के अपने पति के पास हस्तिनापुर गई, और हस्तिनापुर जाकर के अपने पति को लेकर द्वारिका में आई, और द्वारिका में लाई, तब तक उनके शरीर को, पिता के शरीर को तेल के कड़ा में रख दिया था। वहां आने के बाद सद्धन्वा घबराया कि अब कृष्ण तो हमको मारेंगे, तो वे कृतवर्मा के पास गए कि भाई बचाओ हमको, अब कृष्ण मारेंगे। उस समय तो तुमने योजना बना ली, हमने ये काम कर लिया, बचाओ तो सही। कृष्णवर्मा ने कहा रे मेरे से मिलो ही मत, आप मेरे से मिलोगे इसका अर्थ है कि हम कोई आपके साथ शामिल थे भैया, जिसने कंस को नहीं छोड़ा है, जरासंध 17 बार धूल चाट गया, उसके साथ में मैं युद्ध करूंगा, मैं तो युद्ध नहीं करता। तो फिर सद्धन्वा दौड़े दौड़े अक्रूर जी के पास गया, अक्रूर जी आप जैसे तैसे बचाओ। अक्रूर जी ने कहा भैया, जो सारे संसार को बनाने वाला और मेटने वाला है, उसके सामने मैं कैसे लड़ सकता हूं। अच्छा बाबा ये मणि रखो, मैं तो यहां से भगता हूं। आप वो सद्धन्वा वहां से भगा, भगवान भी सद्धन्वा के पीछे पीछे दौड़ते गए, बलराम जी को साथ में लिया भगवान ने कि बलराम जी आप मेरी सहायता कीजिए। कि ठीक है, सहायता करने के लिए गए, दूर तक गए, तो आगे जाकर के मिथिला के पास में आते आते वो सद्धन्वा एकदम हार गया। वो कहते हैं उस समय में वहां जाते जाते जब उसका घोड़ा वगैरह सब गिर गया, तो वो पैदल ही दौड़ने लगा, भगवान भी उसका पीछा किए पैदल पैदल ही, और जाके अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। सिर काटने के बाद सब सारे शरीर में तलाश की कि देखें मणि है कि नहीं, तो मणि नहीं मिली। वापस लौट करके बलराम जी से कहा, बलराम जी हमने उसको मार तो दिया है, मणि तो नहीं मिली। बलराम जी का मन में बहम था कि ये झूठ बोलने में तो कोई बड़ी बात है नहीं कृष्ण के लिए। माखन खाते खाते भी कहता नहीं खाया, मिट्टी खाते खाते भी कह दिया ना हम भक्षितवान अंबे, गोपियों भी कह दिया मैं जरूर आऊंगा और तुमसे मिलूंगा, ये सब बनावटी बात करता। मणि ले ली और ये मणि हमको नहीं देना चाहता और खुद रख लिया है। भगवान के मन में आए कि बलराम जी आप मणि पर भी मेरा विश्वास नहीं करेंगे, कल के युद्ध में शंखचूड को मारा था और मणि निकली थी, हमने आपको दिया, क्या मैं आपसे कोई बात छिपा सकता हूं? बलराम जी को साफ कह दिया महाराज मणि तो मिली नहीं, चलो अपने द्वारिका। बलराम जी ने कहा द्वारिका तो भाई अब तुम ही जाओ, मैं तो थोड़ा यहां विदेह नगर में जाता हूं, जनकपुर में जाता हूं, जनक जी से मिलूंगा, फिर मैं अपने आप घूमते घूमते आ जाऊंगा। कि अच्छी बात है। बलराम जी उधर चले गए और कृष्ण भगवान वहां द्वारिका में आए। इधर अक्रूर जी घबराए कि ओहो क्या हो गया, मैं कैसा इनका भक्त था और मणि के कारण से देखो भगवान उसको मार करके वापिस आएंगे, ये मणि मेरे पास मिलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अक्रूर जी मणि लेकर वहां से भग गए, वो द्वारिका छोड़ करके भग गए। अब इधर द्वारिका में अकाल पड़ने लगा तो प्रजा लोग कहने लगे कि महाराज ये अक्रूर जी के पिता स्वफल्क जी एक बार काशी के अंदर अकाल पड़ा तो इनके पिताजी वहां गए थे तो सब सुकाल हो गया, बरसात हो गई, सब प्रजा सुखी हो गई, तो आप अक्रूर जी को बुलवा दीजिए प्रजा सुखी हो जाएगी। भगवान जानते थे कि भाई बरसात होना नहीं होना किसी एक आदमी के हाथ की बात थोड़ा ही है, पर अक्रूर जी तो बड़े भक्त है, भक्त से गलती हो गई सो हो गई कोई बात नहीं, भक्त अपनी गलती स्वयं ही समझ लेगा, मैं उसको जना करके कह करके उसको अपमानित क्यों करूं। अक्रूर जी ने आदमी भेजे और नहीं भगवान श्री कृष्ण ने आदमियों को भेजा, अक्रूर जी को ढूंढवाया और बड़े सम्मान के साथ अक्रूर जी को वहां पर उपस्थित किया। अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी आप तो हमारे माता पिता हो, आप तो हमारे बहुत प्रेमी हो, आप हमको छोड़कर कैसे चले गए? क्या आपको मणि इतनी प्यारी लगी हम आपको प्यारे नहीं लगे, हमारा प्यार आप भुला दिए? अब ऐसी ऐसी बातें हुई तो अक्रूर जी के टाप टाप आंखों में आंसू आने लग गए। अक्रूर जी हमें मणि नहीं चाहिए, आप सभा में बता दीजिए कि मणि आपके पास है, इस मणि के प्रसंग में स्वयं बलराम जी ने भी मेरे पर विश्वास नहीं किया तो दूसरा कौन करेगा, इसलिए मणि दिखा दो कि मणि किसके पास है। भरी सभा में अक्रूर जी ने कहा कि महाराज इस मणि से मेरी बुद्धि खराब हुई थी, अब ये मणि आप रखो, जब तक मणि रहेगी तो मेरा माथा खराब रहेगा, महाराज इसके चक्कर में जो पड़ जाता है उसका छूटना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान ने कहा अक्रूर जी इस मणि के ऊपर आप जैसे भक्तों का ही अधिकार है, आप रखिए कोई बात नहीं, आपको ये ज्ञान तो हो गया ना कि मणि में ऐसी बात होती है, अब आपके ऐसा नहीं होगा, आप अपने पास में रखिए। अब वो मणि भगवान के कहने से अक्रूर जी के पास रही। बड़ा पवित्र ये श्यमंतक मणि का आख्यान परीक्षित, जो व्यक्ति झूठे कलंक से कलंकित होता है उस व्यक्ति को इस दो अध्यायों का श्यमंतक मणि के पाठ करने से उसके सारी की सारी अशांति दूर हो जाती है। एक बार की बात है, भगवान हस्तिनापुर गए थे, हस्तिनापुर में रहे तो वे एक बार अर्जुन के साथ रथ में बैठ करके यमुना नदी के किनारे घूमने के लिए निकले तो वहां पर एक स्त्री एक कन्या थी, वो तपस्या कर रही थी। भगवान ने कहा अर्जुन जाके पूछो कि वो किसके लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन गए, अर्जुन ने जाकर उनसे पूछा कि भाई आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं, तो उसने उत्तर दिया कि मैं सूर्य की बेटी हूं, मेरा नाम कालिंदी है, यमराज जी की मैं बहन हूं और मैंने सुना है कि कृष्ण ने यहां अवतार लिया है, विष्णु ने अवतार लिया है, मैं उसी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए अर्जुन से ये बात सुने तो, भगवान गए उसको रथ में बैठाए, हस्तिनापुर लाए और हस्तिनापुर लाने के बाद फिर भगवान ने द्वारिका में ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। आयु द्वारिकाम भूये सात्यकी प्रमुखैर वृत है। अब कहते हैं इस प्रकार से कालिंदी के साथ विवाह हो गया, फिर मित्रविंदा के साथ विवाह हुआ। कहते हैं मित्रविंदा की बात यह थी कि वहां पर भगवान गए स्वयंवर में और सबके बीच में प्रसह्य ऋतमान अपने ताकत से उसको हर लाए थे, मित्रविंदा के साथ ऐसे विवाह हुआ। ऐसे ही नागनजीति के साथ सत्या के साथ विवाह हुआ। बात क्या थी, कि सत्या के जो पिता थे उनका नाम था नग्नजित, कौशल देश के वे राजा थे। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मेरी पुत्री को सबसे बलवान जो राजा होगा उसी के साथ में विवाह कराऊंगा। तो उसके साथ थे बैल, उन सात बैलों को जो नथ देगा वही मेरी कन्या का पति होगा। बड़े बड़े राजा लोग आए, कोई नहीं नथ सके। एक बार घूमते घूमते भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो राजा ने बहुत सत्कार किया। सत्कार के अंदर वो भी बिचारी कन्या भी श्री कृष्ण के सत्कार में लगी, तो कृष्ण का बड़ा दिव्य रूप देखा तो सत्या ने विचार किया कि ओहो, लोग तरह तरह से पतियों की उपासना में लगे, असली पति तो यही है जिनके चरण रज को ब्रह्मा धारण करते हैं और शंकर धारण करते हैं, बड़े बड़े लोकपाल धारण करते हैं, ऐसे सारे जगत के जो पति हैं वो तो मेरे पति वैसे ही हो गए, इसलिए यही मेरे पति होने चाहिए। उसके मन में ये बात आई तो भगवान ने कहा सत्यजीत, भगवान से फिर राजा ने कहा कि महाराज आप कैसे पधारे, आपकी क्या इच्छा है। कहने लगे देखो हम तो ये घूमते घामते आ गए, अब जो सत्या के मन में आया ना कि ये मेरे पति होने चाहिए, तो भगवान के मन में आया कि बस वही मेरी पत्नी हो सकती है जो मुझे चाहे। तो भगवान ने कहा कि नरेंद्र याचिया अब कभी भी बिगड़ रहता, याचना तो किसी से करनी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी जो कन्या है वो हमारी योग्य दिख रही है, इसलिए आप अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दो। राजा ने कहा महाराज मेरे भाग्य खुल जाते हैं, आप याद ही नहीं आए, मैंने एक यूं ही शर्त रख दी, सात बैलों को जो नथ देगा उसके साथ विवाह कराऊंगा। अब मेरी प्रतिज्ञा हो चुकी महाराज, पहले आप ध्यान में आते तो मैं बिना प्रतिज्ञा के आपके साथ में विवाह करा देता। भगवान के तुम देना तो चाहते हो ना, कि देना तो हम चाहते हैं, तो आप देखो हम आपके प्रतिज्ञा की भी रक्षा कर देंगे, आप हमारे भावना की रक्षा करेंगे तो हम आपकी बात क्यों नहीं रखेंगे, जरूर रखेंगे। फिर भगवान ने वहां सात रूप बनाकर सातों बैलों को नथ दिया और नथ करके राजा को कह दिया अब हमारी, अब तुम्हारी कन्या उसके साथ विवाह कर दो। बड़े धूमधाम के साथ फिर भगवान का विवाह हुआ, धुंधबियां बजी, बड़े प्रेम के साथ भगवान आ गए राजा। और फिर उसके बाद कहते हैं कि भौमम हत्वा, फिर आगे भगवान का विवाह 16,000 कन्याओं के साथ हुआ भौमासुर को मारने पर। कि महाराज जी कथा क्या है, कथा तो भाई बड़ी विचित्र है। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी महाराज आए। अभी नारद जी महाराज आए तो नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कई बातें की मिलकर के। तो वे आए थे कल्प वृक्ष का एक फूल लेकर के, फूल लेकर के आए कि महाराज ये फूल लीजिए। तो भगवान ने वो फूल दे करके रुक्मणी जी को दे दिया। अब नारद जी का काम तो भाई इधर उधर कई लीलाओं को देखने का है ही, तो वो रुक्मणी जी को जब वो फूल दे दिया तो नारद जी गए सत्यभामा जी के पास। आहो महाराज, नारद जी बड़े अच्छे दर्शन हुए आज आपके, कैसे पधारे आप, कि क्या बतावे, आज तो हमने एक विचित्र बात देखी। मैं कल्प वृक्ष का बहुत अच्छा फूल लेकर के आया था, मैंने भगवान को दिया और भगवान ने ये रुक्मणी जी को दे दिया, देना तो आपको चाहिए था लेकिन उन्होंने रुक्मणी जी को दे दिया। इससे सिद्ध होता है कि वो आपसे ज्यादा रुक्मणी को चाहते हैं। अब सत्यभामा जी की त्योर चढ़ गई, सत्यभामा जी नाराज हो गए। तो फिर सत्यभामा से पूछा भगवान ने, क्यों क्या बात है, कि हमारे आपके यहां एक फूल आया था नारद जी ने दिया था। कि हाँ दिया था, वो फूल कहां गया, कि वो तो मैंने रुक्मणी को दे दिया। तो आपको रुक्मणी जी याद आई, क्या हम याद नहीं आए, कि भाई वो तो किसी एक को देना था दे दिया, तो क्या किसी एक में हम एक नहीं है क्या, तो अब क्या चाहती हूं, उनको फूल दिया है तो हमारे यहां वृक्ष चाहिए। अरे ये वृक्ष तो स्वर्ग में रहने वाला है, हमारे यहां थोड़ी रहेगा, कि जब वो फूल यहां आ सकता है तो वृक्ष भी आ सकता है, वृक्ष आना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छी बात। इधर भौमासुर के यहां 16,000 राजकुमारियां अवरुद्ध हुई थी और इस भौमासुर ने देवताओं का बहुत अपराध किया था। तो भगवान फिर सत्यभामा को अपने गरुड़ पर बैठाए और युद्ध करने के लिए चले भौमासुर से। अब देखो स्त्री को साथ में क्यों लिया है जी, कि ये भौमासुर है, पृथ्वी का बेटा है और ये पृथ्वी ही भगवान की वहां पर पत्नी बनकर के सत्यभामा के रूप में भगवान की सेवा कर रही थी। ये जितनी पत्नियां थी भगवान की, ये दिव्य पत्नियां थी, सामान्य पत्नियां नहीं थी, रुक्मणी जी तो साक्षात लक्ष्मी थी। कहते हैं अब वो गए और उस भौमासुर के साथ युद्ध किया, भौमासुर का भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया, और सिर काटने के बाद भूमि ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज आप बड़े दिव्य हैं, बड़े विचित्र हैं, आप संसार को बनाने वाले हैं, अब भौमासुर के बेटे को आप राजगद्दी पर बैठा दो। तो भौमासुर को राजगद्दी पर बैठा दिया। सत्यभामा से पहले कह दिया कि देखो सत्यभामा, ये जो तुम्हारा बेटा भौमासुर है ये वास्तव में बहुत अपराधी हो गया, बताओ मारना चाहिए कि नहीं, हमसे भी लड़ाई करने लगे, उनका हां मार दीजिए। तो उसी भूमि के रूप में ये भूमि ने स्तुति की है भगवान श्री कृष्ण की, का इनका बेटा है भगदत्त, इसको आप राजा बना दीजिए। भगवान ने उसको राजा बना दिया, और 16,000 कन्याओं के मन में, राजपुत्रियों के मन में ये बात आई कि अयम मे पति भूयात, यही मेरे पति होने चाहिए। भगवान ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैं ही तुम्हारा पति होऊंगा, तुम सब रथ में बैठ करके पहले द्वारिका जाओ, और बाद में मैं आऊंगा द्वारिका, फिर विवाह हो जाएगा। तो फिर सत्यभामा के साथ में गए भगवान स्वर्ग में, स्वर्ग में जाकर के और इंद्र से कहा, भाई इंद्र तुम्हारा ये पारिजात है कल्प वृक्ष है, वो हमको दे दो। कह महाराज कल्प वृक्ष तो वो तो स्वर्ग में ही ठीक है, भगवान ने कहा देते हो कि नहीं देते हो। कह नहीं महाराज, ऐसा तो क्या दे, मैं ये स्वर्ग की मर्यादा है, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लिया कि मर्यादा बताऊं क्या। कह नहीं महाराज आप ले जाओ। तत्काल वो सुदर्शन चक्र को उन्होंने तो अपने में ही समेट लिया, और फिर वे उस कल्प वृक्ष को लेकर के भगवान रवाना हुए, और ला करके उन्होंने सत्यभामा जी के महल के अंदर रख दिया। और फिर वो 16,000 जो रानियां थी, उन 16,000 रानियों के साथ भगवान ने एक ही समय में 16,000 रूप बना करके उनके साथ विवाह किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान की बड़ी विचित्र कथा है। इतनी पत्नियों के बीच में रहते हुए भी भगवान बिल्कुल आसक्ति से रहित थे। अब एक कथा और है भाई, धैर्य रखना, भगवान की पावन कथाएं कभी कभी शादी विवाह में देरी हो भी जाती है, लेकिन अपने एक अध्याय, एक खास बात है जो भगवान की और रुक्मणी जी के बीच की बात है, क्या उनका प्रेम, प्रेम का ये आलाप है, प्रेम की बातें हैं। देखो भगवान के महल की बातें और भगवान के महल के अंदर भगवान के कमरे में होने वाली बातें आज हमको सुनने को मिल रही है, ये क्या है, संत महात्माओं का कृपा प्रसाद है। सुखदेव जी को मिला, व्यास जी को मिला, अरे किसी आदमी के घर की बात बाहर फूटती है तो वो नाराज होता है कि घर की बात बाहर कैसे गई है, और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि आह संत महात्मा कैसे विचित्र है कि हमारे घर की बात और हमारे हृदय की बात ये कैसे लेकर के और लोगों को बता देते हैं। तो सुखदेव जी महाराज अब आगे बता रहे हैं कि एक बार की बात है, भगवान बहुत प्रसन्न थे, जगतगुरु भगवान अपने महल के अंदर अपने पलंग के ऊपर विराजमान थे, भगवान लेटे हुए थे। उस समय में कई सखियों के साथ में रुक्मणी जी ने भगवान के ऊपर पंखा किया, बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, वो पंखी का जो डंडा था वो भी रत्नों से जड़ित था, और रुक्मणी जी के हाथों में जो चूड़ियां थी वो हिलने से खनक 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 आवाज कर रही थी। भगवान वहां उस सुगंधित पदार्थों से सुवासित उस महल के अंदर आराम से विराजमान थे, चंद्रमा की किरणें जालदानों से आ रही थी, और पारिजात वृक्ष माने कल्प वृक्ष के फूलों की सुगंध आ रही थी, अगरु आदि की सुगंध थी, और बहुत स्वच्छ पलंग था, उसके ऊपर भगवान बैठे हुए थे, और ये रुक्मणी जी उनके हवा कर रही थी।